डॉक्टर डेविड टर्नर, गॉस्पेल ऑफ जॉन, सत्र 3। प्रस्तावना, जॉन 1:1-18। 2024, डेविड टर्नर और टेड हिल्डेब्रांट। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह सत्र 3, प्रस्तावना, जॉन 1:1-18 है। नमस्ते, मैं डेविड टर्नर हूँ। यह जॉन के सुसमाचार पर हमारी श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। हम पाठ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिस तरह से हमने इसे प्राप्त किया है, और इसकी सामग्री और साहित्यिक संरचना पर कुछ परिचयात्मक विषयों को देख रहे हैं। तो अब हम पुस्तक का अध्याय दर अध्याय अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। हमने किताब की संपूर्ण सामग्री जॉन पर लगभग 18 वीडियो की योजना बनाई है, इसलिए हम आज यहां सामग्री पर अपना पहला वीडियो केवल प्रस्तावना जॉन अध्याय 1:1-18 तक बिताते हैं, जो निश्चित रूप से पूरे नए नियम में अधिक अद्वितीय और अद्भुत खंडों में से एक है। जब हम जॉन के सुसमाचार के अध्याय 1:1-18 तक को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लाभप्रद रूप से इसकी तुलना इस बात से कर सकते हैं कि कैसे एक वास्तुकार ने कुशलतापूर्वक और खूबसूरती से एक अच्छी इमारत के वेस्टिबुल या एट्रियम को डिजाइन किया होगा। इसलिए जब आप इस बारे में सोचते हैं कि जॉन ने अपनी पुस्तक की संरचना किस प्रकार की है, तो जिन विषयों पर उन्होंने पुस्तक में काफी समय बिताया है, उन्हें यहाँ प्रस्तावना में सामने लाया गया है, ताकि जैसे ही आप आगे बढ़े अच्छी तरह से डिजाइन की गई इमारत, प्रवेश द्वार, आलिंद, बरोठा आपको इशारा करते हैं और आपको आमंत्रित करते हैं और घर या पूरी इमारत में आपका स्वागत करते हैं। तो जॉन का सुसमाचार अध्याय 1:1-18 समग्र रूप से सुसमाचार के लिए समान है। इसलिए यदि आप एक अच्छे घर के लिए एक सुंदर प्रवेश द्वार के बारे में सोचते हैं, जैसे कि यह या उस तर्ज पर कुछ, तो आप यह समझना शुरू कर देते हैं कि मुझे लगता है जॉन के सुसमाचार की प्रस्तावना क्या करती है। इसका साहित्यिक कार्य चौथे सुसमाचार के प्रमुख विषयों से परिचय कराना और पाठक को इसे पढ़ते रहने के लिए प्रेरित करना है। तो आइए चौथे सुसमाचार में विभिन्न प्रमुख विषयों और विचारों के बारे में एक मिनट के लिए सोचें और देखें कि उनका उल्लेख वहां कैसे किया गया है और वे अन्यत्र कैसे विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए हम शुरू करते हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, शुरुआत में शब्द था, शब्द भगवान के साथ था, शब्द भगवान था, शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। तो वह पाठ निश्चित रूप से हमें बताता है कि मानवता के लिए दिव्य संदेश के अवतार के रूप में दुनिया में आने से पहले यीशु का अस्तित्व था। तो यीशु के पूर्वस्तित्व के बारे में यहाँ सिखाया जाता है और आप सोचते हैं कि यह बाद में जॉन के सुसमाचार में कैसे सामने आता है। उदाहरण के लिए अध्याय 8 में, जहां प्रभु यीशु ने कुछ यहूदी लोगों के साथ विवाद के बाद कहा था जो कुछ अर्थों में थे उन्होंने इब्राहिम के जन्म से पहले ही कहा था, मैं पहले से ही उस पर विश्वास करता था। तो स्पष्ट रूप से यीशु का पूर्वस्तित्व था जो जॉन के संदेश का हिस्सा बन जाता है। तथ्य यह है कि यीशु को जीवन के रूप में वर्णित किया गया है और जिस तरह वह बाद में अध्याय 8 में फिर से कहने जा रहा है, मैं दुनिया की ज्योति हूँ और मैं दुनिया में जीवन लाता हूँ। जिस तरह से यीशु को प्रकाश और जीवन के रूप में एक साथ बताया गया है, वह यहाँ दिलचस्प है और यह सुसमाचार में अन्यत्र भी आता है। जॉन द बैप्टिस्ट के मंत्रालय को यहाँ प्रस्तावना में लाया गया है और निश्चित रूप से एक बार जब हम जॉन द बैप्टिस्ट के मंत्रालय के बारे में जॉन अध्याय 1:19 में प्रस्तावना से बाहर निकलते हैं, तो हम तुरंत जॉन द बैप्टिस्ट के मंत्रालय के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। जॉन द बैप्टिस्ट अध्याय 3 के अंत में और फिर बाद में समग्र रूप से जॉन के गॉस्पेल में अध्याय 5 में फिर से आने वाला है। मुझे लगता है कि धर्मशास्त्रीय रूप से प्रस्तावना का मुख्य कार्य हमें यह बताना है, यह किताब इस बारे में है कि आप यीशु के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। हमें प्रस्तावना के बीच में बताया गया है कि वह अपनी ही दुनिया में आया, जिस दुनिया में उसने बनाया, लेकिन दुनिया उसे नहीं जानती थी। वह अपने में आ गया, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम जॉन के सुसमाचार में ऐसे व्यक्तियों की एक पूरी श्रृंखला देखते हैं जो यीशु से प्रभावित हैं और विभिन्न तरीकों से उनका सामना करते हैं। उनमें से कुछ उसे प्राप्त नहीं करते हैं, कुछ उसे प्राप्त करते हैं, और इसलिए पुस्तक अनिवार्य रूप से इस विषय को विकसित करती है कि वह उस दुनिया में कैसे आया जिसे उसने बनाया था, और दुनिया में कुछ लोग जिन्हें उसने बनाया था, वे उससे कोई लेना देना नहीं चाहते हैं। अन्य लोग उसे प्राप्त करेंगे और भगवान और उद्धारकर्ता के रूप में उसका अनुसरण करना शुरू कर देंगे। जॉन में एक और बड़ा विषय जो महत्वपूर्ण है वह है ईश्वर की महिमा, और जैसा कि हमें यहाँ जॉन अध्याय एक में बताया गया है, वह ईश्वर की महिमा को इस तरह से प्रकट करता है जिसके बारे में मूसा केवल सपने में भी सोच सकता था। जैसे ही हम जॉन के सुसमाचार में यीशु द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, हमें तुरंत अध्याय दो में बताया जाता है कि जब उसने गलील के काना में अपना पहला चमत्कार किया, तो उसके शिष्यों ने उसकी महिमा देखी और उन्होंने वहां उस पर विश्वास किया। हमें सुसमाचार में बाद में बताया गया है कि यीशु ने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया, और शायद ईश्वर की महिमा के प्रकाश में जॉन के सुसमाचार का सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा जॉन 17 में उसकी प्रार्थना में है, जब वह प्रार्थना करना शुरू करता है और अपने रिश्ते के बारे में बात करता है। पिता फिर शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है और फिर उन लोगों के लिए जो अपने मंत्रालयों के माध्यम से विश्वास करेंगे, वह इस तरह से प्रार्थना करना शुरू करता है कि वह पिता से उसे वह महिमा बहाल करने के लिए कह रहा है जो दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले उसके पिता के साथ थी। तो यह जॉन के बारे में एक अद्भुत बात है जिस तरह से यह महिमा की बात करता है, और हम मूल रूप से यहाँ प्रस्तावना में संक्षेप में आने वाले विषयों को देखकर जॉन के सुसमाचार का संपूर्ण धर्मशास्त्र कर सकते हैं। प्रस्तावना हमारे लिए न केवल उन विषयों के लिए दिलचस्प है जिन्हें यह चित्रित करता है, बल्कि यह हमारे लिए उस तरीके से भी दिलचस्प है जिस तरह से यह विषयों को चित्रित करता है, और जिसने भी जॉन के सुसमाचार में बहुत अधिक अध्ययन किया है उसने देखा है कि किस तरह से वाक्यांश विज्ञान को रखा गया है, ऐसे तरीके जो बहुत आकर्षक हैं। प्राचीन काल में चियास्म नामक एक साहित्यिक उपकरण था। इसे एक विशेषण में बदल दे जो चियास्टिक बन जाता है, चियास्टिक शब्द। इसलिए हम देख सकते हैं कि जिस तरह से जॉन ने शब्दावली और संरचना के संदर्भ में पहले दो छंदों को बहुत ही सरलता से लिखा है और जिन शब्दों का वह उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वह शब्दों को व्यवस्थित करते हैं वह इस तथ्य पर केंद्रित है कि यीशु इस अर्थ में हमें दे रहे हैं कि भगवान कौन है, है। तो श्लोक एक और दो ग्रीक में, और हम इसे अंग्रेजी में भी देख सकते हैं, शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और भगवान शब्द था और वह शुरुआत में भगवान के साथ था। और इसलिए यदि आप इसे ग्रीक में देखें तो यह और भी अधिक अच्छी तरह से काम करता है। तो भाषा की इस प्रकार की संरचना का कारण लोगों को यह याद रखने में मदद करना है कि क्या कहा गया है, या तो इसे शब्द दर शब्द याद करना है या बस सरल शब्दों का उपयोग करके, लेकिन उन्हें बहुत कसकर संरचित तरीके से उपयोग करके इसके सार को याद रखना है। हम जॉन की संपूर्ण प्रस्तावना को भी इन्हीं पंक्तियों के साथ एक संरचना में देख सकते हैं। कई विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं और इसे इस तरह से देखा है कि यह एक सरल तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं कि सुसमाचार किस तरह से संरचित है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो यीशु को दुनिया के मूल निर्माता के रूप में चित्रित किया जाता है जो दुनिया में जीवन और प्रकाश लाया। जब प्रकाश के बारे में आगे बात की गई तो जॉन बैप्टिस्ट ने यीशु को गवाही दी। फिर हमें बताया गया कि प्रकाश दुनिया में आया, भले ही इसे कई लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। जिन्होंने इसे प्राप्त किया वे भगवान के बच्चे बनने के लिए अधिकृत थे। फिर श्लोक 9 और 10 में जिस तरह से प्रकाश दुनिया में आता है वह इस तथ्य के समानांतर है कि फिर से इससे दूर जाकर शब्द मास बन गया। जॉन की गवाही का उल्लेख पहले से ही श्लोक 6 से 8 में किया गया है, लेकिन श्लोक 13 और 14 में फिर से उल्लेख किया गया है। और फिर अंततः यीशु को ईश्वर का अंतिम रहस्योद्घाटन करता बताया गया है। इसलिए हम दिलचस्प तरीके से देखते हैं कि किस तरह से यीशु को उस व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है जो मूल रूप से निर्माता था, और यीशु ही वह है जिसने अंततः प्रकट किया। जॉन द बैप्टिस्ट की गवाही का 2 बार उल्लेख किया गया है। प्रकाश दुनिया में आ रहा है, दुनिया मास बन रही है। और फिर प्रस्तावना का हृदय वह तरीका है जिसमें शब्द की प्रतिक्रिया का यहाँ साथ साथ उल्लेख किया गया है। कई लोगों ने दुर्भाग्य से इस शब्द को अस्वीकार कर दिया और अब भी करते हैं। हालांकि कई लोगों ने वचन प्राप्त किया है और अब भी करते हैं। तो प्रस्तावना को इस तरह से संरचित करने का कारण, जिस तरह से हम इसका विश्लेषण करेंगे, वह प्रस्तावना के दिल पर ध्यान केंद्रित करता है। वह अपने में आ गया, उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु वास्तव में कुछ ने उसे ग्रहण किया, और जिन्होंने किया वे परमेश्वर की संतान बनने के लिए अधिकृत हो गए। प्रस्तावना की संरचना करने और यह सोचने का एक और तरीका कि यह हमें यीशु की कहानी कैसे बताता है, जॉन 1:01 और 1:14 में 2 अंशों पर ध्यान केंद्रित करना है जहां हमें बताया गया है कि शब्द का उल्लेख किया गया है। तो हम प्रस्तावना के मुख्य भाग पहले 13 छंदों में देखते हैं कि शब्द उत्कृष्ट रचनाकार है। शब्द मनुष्य के लिए जीवन और प्रकाश का दाता है। जॉन बैप्टिस्ट यीशु के प्रकाश के रूप में होने की गवाही देता है, और फिर कैसे यीशु प्रकाश के रूप में दुनिया में आया और कई लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन कुछ ने उसे दुनिया के उत्कृष्ट निर्माता के रूप में स्वीकार किया। छंद 14 से 18 तक उस पर प्रकाश डालते हैं और आपको इसका एक धार्मिक सारांश देते हैं जो कि बहुत अधिक संक्षिप्त लेकिन बहुत अधिक गहन और केंद्रित है। तो जैसे शब्द ब्रह्मांड का मूल पारलौकिक निर्माता है, वैसे ही शब्द भगवान का अवतार है। अत शब्द न केवल ईश्वरीय रचिता है बल्कि मनुष्य भी है। तो अध्याय 1:14 के अनुसार यह शब्द ईश्वर की पूर्ण कृपा और सत्य का महान प्रकट करता है। जॉन द बैप्टिस्ट की गवाही C' ठीक वैसे ही जैसे जॉन द बैप्टिस्ट की गवाही का पहले उल्लेख किया गया है। जॉन द बैप्टिस्ट की गवाही फिर से और फिर इसके दूसरे खंड श्लोक 14 से 18 के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह से मूसा को वहां मुख्य विशेषता के रूप में लाया गया है। तो इस तरह से प्रवचन की संरचना को देखने से मूल रूप से हमें पता चलता है कि जिस तरह से आप प्रतिक्रिया देते हैं और यीशु को मूसा से जोड़ते हैं, वह हमें इस बारे में बहुत कुछ बताता है कि आप अपनी धार्मिक निष्ठा में कहां जा रहे हैं। तो वास्तव में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वह यह है कि श्लोक 14 से 18 तक पहले 13 श्लोकों को यीशु और मूसा के संदर्भ में कैसे सारांशित किया जाए। तो आपको यह समझना होगा कि अपने मूल परिवेश में यह उन लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न था जो जॉन के सुसमाचार को पढ़ने और यीशु के बारे में सोचने जा रहे थे। यीशु और मूसा का क्या संबंध है? क्या हम मूसा और उसके माध्यम से ईश्वर से प्राप्त रहस्योद्घाटन से खुश होंगे, या क्या हम यीशु को अंतिम रहस्योद्घाटनकर्ता के रूप में देखने जा रहे हैं जिसका रहस्योद्घाटन मूसा को समाप्त नहीं करता है बल्कि वास्तव में इसमें जोड़ता है और इसे इसके अंतिम निष्कर्ष तक ले जाता है? इसलिए जैसा कि हम यहाँ स्लाइड के नीचे बता रहे हैं, पाठक को इस प्रश्न का सामना करना पड़ेगा कि क्या वह यीशु में ईश्वर का अंतिम रहस्योद्घाटन प्राप्त करेगा या क्या वह यीशु को अस्वीकार कर देगा और मूसा के माध्यम से ईश्वर के आंशिक रहस्योद्घाटन के साथ ही रहेगा। हम इसे तुरंत क्रियान्वित होते देखना शुरू करते हैं जब जॉन बैप्टिस्ट का एक शिष्य अपने भाई के पास आता है और कहता है कि हम चाहते हैं कि आप यीशु को देखने आए। वह वही है जिसके बारे में मूसा और भविष्यवक्ताओं ने बात की थी। निःसंदेह बाद में अध्याय 5 में यरूशलेम में यीशु और उसके वार्ताकारों के बीच भारी असहमति है और बहस मूसा पर है और क्या असली मूसा खड़े होंगे जैसा कि वे एक पुराने क्विज शो में कहा करते थे। मूसा वास्तव में किसका समर्थन करने जा रहा है? क्या फरीसी मूसा के अनुयायी हैं या नहीं? यीशु ने एक त्रिभुज स्थापित किया है जिसमें वह कहते हैं कि मैं मूसा के साथ हूं, मूसा मेरे साथ है। मुझे नहीं समझ पाते तो आप वास्तव में मूसा को नहीं पा सकते। इसलिए मूसा जॉन के सुसमाचार में बेहद महत्वपूर्ण है और जाहिर है जिस तरह से जॉन के संदेश का सुसमाचार यहूदी लोगों के बीच प्राप्त हुआ था जो स्पष्ट रूप से मूसा के प्रति निष्ठा रखते थे। सवाल यह है कि क्या वह निष्ठा अपने आप में पर्याप्त थी या क्या मूसा स्वयं शब्द के किसी अर्थ में यीशु की ओर देख रहा था। इसलिए हम वास्तव में प्रस्तावना नहीं कर सकते। हम इसकी समग्र संरचना के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन हम वास्तव में इसके बारे में स्पष्ट रूप से तब तक नहीं सोच सकते जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि यह शब्द कौन है या यह शब्द क्या है। तो अब हम ग्रीक शब्द लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो शुरुआत में पहली कविता में आता है। लोगो एक शब्द है और बाइबल के विद्वान सैकड़ों वर्षों से इस शब्द की पृष्ठभूमि और इसका क्या अर्थ है, जॉन के मूल दर्शकों के लिए इसका क्या अर्थ है और यह कहां से आ रहा है को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है जब मैं मदरसा में छात्र था और इंडियाना के एक छोटे से देश के चर्च में एक युवा समूह के साथ काम करता था तो हमें जॉन पर उपयोग करने के लिए कुछ संडे स्कूल सामग्री मिली थी जिससे यह सिद्धांत सामने आया था कि जब जॉन अपनी किताब लिख रहा था तो वह चाहता था कि यूनानी लोग इसे समझें। पुस्तक में उन्होंने यीशु को लोगों के रूप में वर्णित किया क्योंकि लोगों ग्रीक दर्शन का एक बड़ा हिस्सा था और यह स्टोइक विचार में बिल्कुल सच है और मैं पाइथागोरियन विचार में भी विश्वास करता हूँ। ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मांड एक बुनियादी सिद्धांत या विचार या कारण या संरचना की अभिव्यक्ति है और हर चीज उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो इस अवैयक्तिक लोगो, इस अवैयक्तिक संरचना जिसने दुनिया को बनाया, उसे विश्वदृष्टि के इस दृष्टिकोण में दुनिया के दिल के रूप में देखा गया। तो इस दर्शन में दुनिया के बारे में सोचने के इस तरीके में कारण या संरचना या तर्क के सिद्धांत या दुनिया में सुव्यवस्था के विचार को मूल रूप से ब्रह्मांड में सबसे बुनियादी तत्व के रूप में देखा गया था। यदि यह मामला है तो यीशु को लोगों के रूप में वर्णित करके जॉन जो कहना चाह रहा है वह यह है कि ग्रीक विश्वदृष्टि रखने वाले ये लोग जो कुछ भी सोच रहे थे वह मूल रूप से यीशु में निहित है। जो कुछ भी आपने लोगों के बारे में सोचा था वह वास्तव में यीशु है। लोगो शब्द को देखने का एक और तरीका और इसके दर्शकों के लिए इसका क्या अर्थ हो सकता है यह है कि इसका उपयोग यहूदी संस्कृति में कैसे किया गया था जिसने कुछ यूनानी विचार हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म को अवशोषित कर लिया था। दूसरे शब्दों में यूनानीकृत या यूनानीकृत यहूदी जो डायस्पोरा में रह रहे थे और फिलिस्तीन में रहने वाले यहूदियों की तुलना में हेलेनिस्टिक विश्वदृष्टिकोण को काफी हद तक आत्मसात कर चुके थे। हेलेनिस्टिक यहूदी धर्म में लोगों को ज्ञान के व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता था। इसलिए लोगों और ज्ञान को बहुत ही सरल और परस्पर संबंधित विषयों के रूप में देखा गया। तो ग्रीक शब्द लोगों को ग्रीक शब्द सोफिया से जोड़ा जाएगा जो हिब्रू में होकमा होगा और इन चीजों को इस विचार में बहुत समान वस्तुओं के रूप में देखा गया था। इसलिए हम इसे देखने के लिए नीतिवचन अध्याय 8 जैसी विहित पुस्तकों और सिराच जैसी अपोक्रिफल पुस्तकों को देखते हैं। उदाहरण के लिए नीतिवचन 8 में बुद्धि को मूर्त रूप दिया गया है और एक स्त्री इकाई के रूप में बोलते हुए कभी कभी महिला बुद्धि भी कहा जाता है। और यह कहता है कि प्रभु ने अपने प्राचीन कार्यों के पहले ही अपने मार्ग के आरंभ में मुझ पर अधिकार कर लिया। अनादिकाल से मैं पृथ्वी के आदिकाल से स्थापित किया गया हूँ। जब गहराई नहीं थी तो मुझे वहां लाया गया जहां पानी से भरपूर झरने नहीं थे। पहाड़ों के बसने से पहले, पहाड़ियों से पहले मुझे बाहर लाया गया था। जब उसने पृथ्वी और मैदान और जगत की धूल भी न बनाई और आकाश को स्थापन किया तो मैं वहां था। मैं एक कुशल कारीगर के रूप में उनके बगल में था। मैं उसके सामने सर्वदा आनंदित होता था और जगत और उसकी पृथ्वी और मनुष्यों के कारण आनंदित होता था। तो यह भगवान की बुद्धि को उनके गुणों और विशेषताओं में से एक के रूप में वर्णित करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है और कैसे भगवान की बुद्धि ने दुनिया को बनाने और बनाए रखने के तरीके को सूचित किया। तो नीतिवचन, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी तरह से ज्ञान के बारे में है और इसलिए हम समझ सकते हैं कि ज्ञान को इस तरह व्यक्त किया जा रहा है और उसके बारे में बात की जा रही है। ज्ञान की इस समझ और लोगों के साथ इसके संबंध के साथ समस्या यह है कि यदि जॉन के लेखक इस अर्थ में यीशु को एक मूर्त ज्ञान के रूप में देख रहे थे तो नीतिवचन 8 की भाषा ज्ञान को भगवान की पहली रचना के रूप में लेती प्रतीत होती है। और ईश्वर की पहली सृजनात्मक बुद्धि यह है कि उसने दुनिया की बाकी सृजित संस्थाओं को बनाने के लिए इस विशेषता का उपयोग कैसे किया। तो इस अर्थ में बुद्धि ईश्वर के रचनात्मक कार्यों में से प्रथम की तरह होगी। उसने ज्ञान का सृजन किया और फिर शेष विश्व के निर्माण में सहायता के लिए ज्ञान का उपयोग किया। लेकिन यदि जॉन इसे अपने ईसाई धर्म के आधार के रूप में उपयोग कर रहे थे तो वह इससे अधिक कुछ कह रहे होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जॉन ने इस तथ्य को स्वीकार किया होगा। जॉन के पहले कुछ छंदों में उन्होंने जो कहा है उसे देखते हुए कि यीशु एक थे सृजन का हिस्सा, बल्कि यूहन्ना 1 में यीशु सृष्टिकर्ता है, सृष्टि का प्रथम भी नहीं। इसी प्रकार सिराच की पुस्तक में एक अपोक्रिफल पुस्तक, जिसे कभी कभी एक्लेसियस्टिकस भी कहा जाता है, हमारे पास सिराच 1 में ये शब्द हैं, सारा ज्ञान प्रभु से है और यह उसके साथ हमेशा के लिए रहता है। यहां हमारे पास यह है, ज्ञान अन्य सभी चीजों से पहले बनाया गया था। बुद्धि के बारे में यह कहना एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन फिर भी यह कहा जाता है कि बुद्धि एक सृजित चीज थी। बुद्धि का मूल किस पर प्रकट किया गया है? उसकी सूक्ष्मताएं उन्हें कौन जानता है? वहां एक है जो बुद्धिमान है, बहुत डरने योग्य है, अपने सिंहासन पर बैठा है, भगवान, यह वह है जिसने उसे बनाया है। निश्चित रूप से ज्ञान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपना दैनिक जीवन जीते हैं और हमें ज्ञान की आवश्यकता है। आप कह सकते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम यह कहना चाहते हैं कि यीशु एक सृजित प्राणी थे और इसलिए यहां जो सादृश्य बनाया जा रहा है। फिर यदि सिराच में ज्ञान की हेलेनिस्टिक समझ को दर्शाया गया है और कुछ अन्य हैं जिन्हें हम यहां उद्धृत कर सकते हैं यदि हमें आगे बढ़ना है, यदि जॉन के लेखक इन ग्रंथों में उन रूपांकनों की ओर इशारा कर रहे थे तो वह निश्चित रूप से यह कहना चाहते थे कि यीशु केवल वह नहीं थे लेकिन उससे भी अधिक था। दूसरे शब्दों में जिसे आप ज्ञान समझते हैं वह यीशु से मिलता है और उसका स्थान लेता है, जो न केवल ईश्वर की रचना का पहला है, वह निर्माता भी है। इस कारण से मुझे लगता है कि शायद हमें इस विचार से परे जाने की जरूरत है कि जॉन केवल ग्रीक दार्शनिकों या उन लोगों से बात करने के लिए लोगों का उपयोग कर रहे थे जो इससे प्रभावित थे, या हेलेनिस्टिक यहूदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास ज्ञान की उन्नत समझ थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमें इसका एक और पहलू लाने की जरूरत है जो थोड़ा और अधिक समझ में आता है कि वह वास्तव में ज्ञान के बारे में बात कर रहा है जिस अर्थ में इसका उपयोग हिब्रू बाइबल में किया गया है। मैं यहाँ तनक शब्द का उपयोग कर रहा हूँ जो एक कालभ्रम है, क्षमा करें, कालभ्रम नहीं, मैंने अपना शब्द खो दिया है, एक ऐसा शब्द जिसे बनाने के लिए अन्य शब्दों के पहले शब्द का उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास तनाक तोरा, हमारे पास नेवीम पैगंबर, हमारे पास केतुविम लेख हैं, इस तरह हमें तनाक शब्द मिलता है। तो तनाक बस एक तरीका है जिससे यहूदी लोग पुराने नियम के बारे में बात करते हैं, एक संक्षिप्त शब्द। मुझे लगता है कि यह वह शब्द है जिसे मैं एक पल पहले ढूंढ रहा था, यह अंततः मेरे पास आया। तो हिब्रू बाइबल में भगवान ने अपने शब्द से दुनिया का निर्माण किया और इसलिए हमारे पास उत्पत्ति के साथ साथ भजन 33 और यशायाह जैसे अन्य ग्रंथों में भी है। इसलिए हम यह सुनिश्चित करने के लिए इन पाठों को संक्षेप में देखते हैं कि हम इसे समझते हैं। उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 3 में भगवान ने दुनिया को अस्तित्व में लाने की बात कही। भगवान ने बस इतना कहा, प्रकाश होने दो, यही या, और निश्चित रूप से या प्रकाश था। तो हम इसे उत्पत्ति की पुस्तक में कई बार देखते हैं कि भगवान की वाणी सक्रिय है, भगवान की वाणी क्रियात्मक है। जब भगवान कुछ कहते हैं तो कुछ होता है और इसलिए उनका शब्द, उनका भाषण दुनिया में एक रचनात्मक शक्ति है। भजन 33 इस पर कुछ हद तक प्रतिबिंबित करता है जब यह कहता है, प्रभु के वचन से आकाश और उसके मुंह की सांस से उनकी सारी सेनाएं बनी। और वह कहता है कि ईश्वर इसी तरह काम करता है, ईश्वर बोलता है और वैसा हो जाता है, ईश्वर आदेश देता है और वह अटल रहता है। बाद में यशायाह 55 में हम पढ़ते हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं हैं, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। बाद में यह दिखाने के लिए वर्षा की सादृश्यता का उपयोग करने के बाद कि भगवान को पृथ्वी पर अपनी संभावित वर्षा से परिणाम मिलते हैं, वह उस सादृश्य में आगे कहते हैं, जैसे वर्षा चीजों को अंकुरित करने का कारण बनती है, चीजों को घटित करती है, इसलिए सादृश्य से मेरा वचन वही होगा जो मेरे मुख से निकलता है। जो कुछ मैं चाहता हूँ उसे पूरा किए बिना और जिस विषय पर मैं इसे भेजूंगा उसमें सफल हुए बिना यह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा। इस अर्थ में यीशु ईश्वर का वचन है, इस अर्थ में कि वह ईश्वर की रचनात्मक सांस है, वह है जो ईश्वर के संदेश को एक शक्तिशाली तरीके से व्यक्त करता है, जो ईश्वर की सभी इच्छाओं को पूरा करता है। तो जाहिरा तौर पर जब हम लोगों और जॉन की पृष्ठभूमि को समझने के इन तीन तरीकों के बारे में सोचते हैं तो हम शायद इन्हें परस्पर अनन्य विकल्पों के रूप में नहीं सोच रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि जब जॉन लिख रहा था, मुझे लगता है कि वह मुख्य रूप से हिब्रू बाइबल में शब्द की इस समझ के साथ लिख रहा था, जैसा कि उसके दिमाग में सबसे आगे था कि वह जानता था कि जब उसने यीशु को ईश्वर के शब्द के रूप में, निर्माता के रूप में वर्णित किया था कि लोग इसे उत्पत्ति और भजन 33 और यशायाह 55 और अन्य ग्रंथों के साथ जोड़ रहे होंगे जिनमें हम जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुझे यकीन है कि जॉन ने आपत्ति नहीं जताई होती अगर लोगों ने नीतिवचन 8 और अपोक्रिफा में संबंधित ग्रंथों जैसे कि सिराच ने ईश्वर की रचना के तरीके से संबंधित शब्द और ज्ञान के बारे में बात की थी, उस पर विचार किया होता। और यूनानी दर्शन में भी विचार यह है कि एक अर्थ में एक शब्द एक ज्ञान एक सिद्धांत है जो दुनिया को एक साथ रखता है। मुझे लगता है कि ये बातें आवश्यक रूप से जॉन के मन में जो कुछ भी था उसके विपरीत नहीं है और हो सकता है कि उनका इरादा एक ऐसे शब्द को चुनने का रहा हो जो अलग अलग तरीकों से बहुत व्यापक दर्शकों से संबंधित होता जब तक लोग समझते कि यीशु ने इन सभी अन्य उपयोगों को हटा दिया है। तो आइए अब पृष्ठभूमि के बारे में ज्यादा बात न करें, बल्कि इस प्रश्न की अग्रभूमि पर बात करें और वॉचटावर बाइबल एसोसिएशन और उनके अनुवाद न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन से जुड़े कुछ विवादों के एक विशेष बाइबल अनुवाद में इस शब्द को कैसे समझा जाता है, इस पर बात करें। वे यूहन्ना 1:1 का अनुवाद करते हैं कि यह शब्द ईश्वर था। इसलिए जब हम जॉन 1:1 पढ़ते हैं तो हमारा सामना तुरंत किसी रहस्य से होता है। आरंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था, लेकिन यहां समझना कठिन है, और शब्द ईश्वर था। तो ईश्वर शब्द ईश्वर के साथ कैसे हो सकता है और एक ही समय में ईश्वर कैसे हो सकता है? ट्रिनिटी के सिद्धांत से संबंधित इस मामले पर रूढ़िवादी ईसाई शिक्षण इस तरह के ग्रंथों को समझने लगा है कि यीशु वास्तव में एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। वह पिता और आत्मा के समान व्यक्ति नहीं है, लेकिन वह उनके साथ एक एकीकृत इकाई है। तो ट्रिनिटी में हमारे पास तीन अलग अलग व्यक्ति हैं और हमारे पास पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में ईश्वर का एक एकीकृत सार है। हालांकि वॉचटावर एसोसिएशन और उनके न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन की समझ कुछ अलग है। आरंभ में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। इस बाइबल अनुवाद का एक दृष्टिकोण यह है कि चूंकि ग्रीक पाठ यीशु का वर्णन करने के लिए निश्चित लेख का उपयोग नहीं करता है, शुरुआत में शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था, यह शब्द इसमें नहीं आता है, वहां ग्रीक कि तुम्हें अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा शब्द एक भगवान था। जिस किसी ने वास्तव में ग्रीक को बहुत लंबे समय तक देखा है, वह जानता है कि यह एक बड़ी गलती है, और जिस तरह से आप इस तरह से ग्रीक का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, उसमें एक से एक पत्राचार नहीं होता है। वॉचटावर इसका अनुवाद इस प्रकार करता है क्योंकि उनका मानना है कि यीशु ईश्वर की पहली रचना थे, और मुझे लगता है कि उन्हें यह समझ है कि यीशु पुराने नियम में एक बड़े स्वर्गदूत थे, शायद माइकल, और बाद में नए नियम के समय में पूर्व महादूत माइकल एक इंसान बन गया और सृष्टि करने और उसमें से एक बनाने में भगवान का पहला एजेंट बन गया। दिलचस्प बात यह है कि वे श्लोक 18 का अनुवाद भी करते हैं, कोई भी किसी भी समय भगवान को नहीं देख सकता है, वह एकमात्र छोटा सा भगवान है जो उसकी गोद में है, और वे वहां कोष्ठक स्थिति में एक छोटा सा नोट देते हैं जो पिता की गोद में है, जिसने उसे समझाया है। फिर वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप भगवान का वर्णन करने में जी शब्द को तब तक बड़े अक्षरों में नहीं लिख सकते जब तक कि आपके पास न्यू टेस्टामेंट में ग्रीक शब्द थियोस के साथ हालेख न हो। हालांकि जिस किसी ने भी नए नियम का बहुत अधिक अनुवाद किया है, वह जानता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो वे यहाँ जो कह रहे हैं वह यह है कि आप वास्तव में यह समझ सकते हैं कि यीशु ही मुख्य ईश्वर हैं यदि आपके पास हर बार उनके नाम के सामने यह शब्द हो। निश्चित रूप से रूढ़िवादी ईसाई समझ में यह न केवल कुछ ऐसा है जिसे ग्रीक व्याकरण से नहीं समझाया जा सकता है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जिसे केवल जॉन 1 की भाषा से ही नहीं समझा जा सकता है। जैसा कि आपने मेरे साथ देखा है, अगर हम जॉन अध्याय 1:1 को देखें तो यह कहता है कि शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। वह आरंभ में परमेश्वर के साथ था, उसके द्वारा पद 3 सभी वस्तुएं उसके बिना बनाई गईं, कुछ भी नहीं बनाया गया जो बनाया गया है। तो अगर हम वहीं रुकें और ध्यान दें कि पाठ क्या कह रहा है, तो यह कह रहा है कि सभी चीजें उसके माध्यम से बनी थीं, उसके बिना कुछ भी नहीं बना था। बेशक अगर हम वॉचटावर द न्यू वर्ल्ड ट्रांसलेशन का अनुवाद लेते हैं तो हम यह मानेंगे कि हमें श्लोक 3 को फिर से पढ़ना होगा। श्लोक 3 में कहा जाना चाहिए था कि उसके माध्यम से सभी चीजें उसके अलावा बनाई गई थीं, उसके बिना उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया गया था, क्योंकि यीशु बनाया गया होता और वह स्वयं सृजित प्राणियों में से एक होता। तो यीशु ने बाकी सब कुछ बनाया, लेकिन वह स्वयं एक सृजित प्राणी था। श्लोक 3 ऐसा बिल्कुल नहीं कहता है और ग्रीक व्याकरण इस अनुवाद का समर्थन नहीं करता है। तो जो हम यूहन्ना अध्याय 1 श्लोक 1 में आरंभ में पाते हैं, वह शब्द था और शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। बस यही है कि हमारे पास यह चीज है जिसे धर्मशास्त्री त्रिनेत्र त्रिभुज कहते हैं। तो हमारे पास इस विशेष संस्करण में यह लैटिन में है। मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ थोड़ा विस्तार दूंगा और इसे अंग्रेजी के बजाय लैटिन में करूंगा। हर किसी को काम चलाने के लिए थोड़ी लैटिन भाषा की आवश्यकता होती है ना? नहीं? तो हमारे पास पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हैं, और जैसा कि आप पहले ही अनुमान लगा चुके होंगे कि ये तीनों ड्यूस हैं, यानी ईश्वर हैं। एस्ट का सीधा सा मतलब है और नॉन एस्ट का मतलब है नहीं है। तो पिता का व्यक्तित्व पुत्र के व्यक्तित्व से भिन्न है और पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व से भिन्न है, फिर भी प्रकृति में ये तीनों वास्तव में दिव्य हैं, वास्तव में भगवान हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जॉन 1:2 इसकी पुष्टि कर रहा है जब यह बताता है कि शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था। यह कहना कि शब्द ईश्वर के साथ था, यह कहना है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही व्यक्ति नहीं हैं, वे अलग अलग संस्थाएं हैं। लेकिन जैसा कि जॉन 1 में कहा गया है कि शब्द ईश्वर था, यह कहने का अर्थ यह है कि पिता ईश्वर है, आत्मा ईश्वर है और पुत्र शब्द भी ईश्वर है। इसलिए हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें जॉन अध्याय 1 में त्रिमूर्ति का पूर्ण विकसित सिद्धांत मिलता है। स्पष्ट रूप से हम यह कह रहे हैं कि जॉन अध्याय 1 एक महत्वपूर्ण मार्ग है जिसने वर्षों से यीशु और त्रिमूर्ति के बारे में ईसाई सोच को प्रभावित किया है। तो हम यहाँ जो कह रहे हैं, जब हम कहते हैं कि शब्द भगवान के साथ था, संभवतः पद 18 में उस शब्द की अभिव्यक्ति पिता के साथ एक अंतरंग संबंध था द्वारा सबसे अच्छी तरह से व्याख्या की गई है। ध्यान दें कि यह कहता है कि एक और एकमात्र पुत्र है जो स्वयं भगवान है और भगवान के साथ निकटतम संबंध में है। वहां का शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका शाब्दिक अनुवाद अक्सर छाती के रूप में किया जाता है। यह तटरेखा में खोखली जगह को संदर्भित कर सकता है जहां एक छोटा सा खो या एक खाड़ी है जो सिर्फ एक गड्ढा है, और शायद इसकी तुलना उस खोखले स्थान से की जाती है जो तब बनता है जब आप किसी को गले लगाने के लिए अपनी बाहें उठाते हैं। तो एकमात्र ईश्वर जो स्वयं ईश्वर है, वह पिता के साथ निकटतम संबंध में है। मुझे लगता है कि यह जॉन की अपनी टिप्पणी होगी कि अध्याय 1 श्लोक 1 और 2 में उसका क्या मतलब है। वह शुरुआत में भगवान के साथ था। वह कोई भगवान नहीं था। वह सचमुच दिव्य था। पिता, पुत्र और आत्मा तब अस्तित्व में रहते हैं जिसे धर्मशास्त्रियों ने एक दूसरे के साथ एक पैराकोरेटिक संबंध कहा है। पैराकोरेसिस का अर्थ है सामुदायिक संबंध। इसका मतलब यह है कि त्रिमूर्ति में से एक व्यक्ति जो करता है, उसमें बाकी दो भी शामिल होते हैं। इसलिए हमारे पास त्रिईश्वरवाद नहीं है, तीन देवता अपना काम करते हैं। हमारे पास एक ईश्वर है जो तीन व्यक्तियों के रूप में शाश्वत रूप से विद्यमान है और एक साथ मिलकर हमारी मुक्ति का कार्य कर रहा है, और हमें ईश्वर के मुक्ति प्राप्त लोगों के रूप में उस मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। फिर जॉन अध्याय 1 के दूसरे मामले की ओर बढ़ते हुए हम पुराने नियम के इस अंश के संबंध के बारे में सोचना चाहते हैं, और जॉन अध्याय 1 श्लोक 14 से 18 तक की भाषा कहां से आती है। यूहन्ना 1 श्लोक 14 से 18 तक कहता है कि शब्द देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा देखी। इस बारे में बताता है कि किसी ने वास्तव में ईश्वर को कभी नहीं देखा है, लेकिन यीशु ने उसे ज्ञात कराया है। यीशु ने जो पिता के पक्ष में है, जो पिता के साथ घनिष्ठ संबंध में है, उसे ज्ञात कराया है। अध्याय एक श्लोक 14 के अनुसार यीशु अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है, और अनुग्रह और सत्य अध्याय एक श्लोक 17 में यीशु मसीह के द्वारा आया था। यह सभी शब्द निर्गमन अध्याय 33 में मूसा के परमेश्वर के साथ संबंध से प्रत्याशित प्रतीत होते हैं। वापस जाएं और निर्गमन 33 पढ़े, हम देखते हैं कि मूसा मिलन के तंबू में भगवान से मिल रहा है, और जब वह शिविर का दौरा करने के लिए वापस आता है तो उसका चेहरा अभी भी चमक रहा है, क्योंकि वह भगवान की महिमा का आनंद ले रहा था। फिर भी इस स्थिति में मूसा अपने सामने परमेश्वर के लोगों का नेतृत्व करने के कार्य के लिए अपर्याप्त महसूस करता है, तो वह भगवान से कहता है, मुझे अपनी महिमा दिखाओ। वह इस बात की अधिक समझ और समझ चाहता है कि ईश्वर कौन है जो उसे लोगों को ईश्वर दिखाने और बताने में सक्षम बनाएगा कि ईश्वर कौन है, और उसे लोगों का नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगा। तो भगवान उससे कहते हैं कि तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकते, क्योंकि कोई भी मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपनी पीठ दिखाऊंगा। अब यह एक दिलचस्प अवधारणा है ना? मुझे यकीन नहीं है कि पुराने नियम के विद्वान आज यह सब कैसे समझाएंगे, लेकिन आप भगवान के चेहरे को कैसे देखते हैं, उसकी पीठ को तो छोड़ ही दें। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि इसे मानवीय भाषा में भगवान के बारे में बात करना मानवरूपता कहा जाता है, और भगवान को आमने सामने देखने और वास्तव में उनके व्यक्तित्व की पूरी जीवंतता और आभा को पकड़ने के बजाय मूसा को उनकी सारी महिमा की अनुमति है। भगवान की बस एक झलक देखें, भगवान के पिछले हिस्से की एक झलक पाने का आलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए निर्गमन 34 में मूसा ने ईश्वर को चट्टान की दरार में छिपा दिया और खुद को दयालु और दयालु ईश्वर के रूप में बताया, जो दृढ़ प्रेम और विश्वासयोग्यता से भरपूर था। वह एक ईश्वर है जो रवे हेसेड वे है एमेट। यह बहुत संभव है कि यहाँ जॉन की भाषा यह है कि यीशु जारिटोस अनुग्रह और एलेथिया से भरी एक खेल की दौड़ है। सच्चाई का मतलब जानबूझकर वापस जाना और पुराने नियम में भगवान के बारे में बात करना और लोगों को यह याद दिलाना है कि भगवान ने मूसा से क्या कहा था। निर्गमन 34:6, यदि यह मामला है तो मूसा ने जो कुछ भी चाहा है, कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाओ जो हमने यीशु मसीह में देखी है। कृपया मुझे अपनी महिमा दिखाओ, हमने उसकी महिमा देखी है। मूसा ईश्वर का चेहरा देखने और जीवित रहने में सक्षम नहीं था, फिर भी यीशु ही वह है जिसने हमें दिखाया कि पिता कौन है, और वह इसे इतनी गंभीरता से लेता है कि अध्याय 14:09 में उसने कहा कि यदि आपके पास पिता है तो आप मुझसे पिता के बारे में क्यों पूछते हैं, मुझे देखा है, तुमने पिता को देखा है। तो मूसा को मानो परमेश्वर के पिछले हिस्से की एक झलक मिल गई। यीशु वह है जो एक अनुवाद के अनुसार पिता के पक्ष में है, या वह पिता के साथ सबसे घनिष्ठ संबंध में है। तो ईश्वर वह है जो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर है, और यीशु वह है जो उस ईश्वर को पूरी तरह से प्रकट करता है। इसलिए हम उस समय का उपयोग कर सकते हैं जो हम अभी नहीं कर सकते हैं, और जॉन के कई छंदों को देख सकते हैं जो उन शब्दों के बारे में बहुत कुछ बताते हैं जिन्हें हम यहाँ देख रहे हैं, और इसे हमें और अधिक गहराई से दें ताकि हम इससे बहुत कुछ प्राप्त करने और इसे और भी बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो सका। इसलिए जब हम जॉन के सुसमाचार को देखते हैं तो शायद यह उस तरह की बात है जो अलेक्जेंड्रिया के क्लेमेंट के साथ हमारे मन में थी, जब उन्होंने कहा था कि अन्य सुसमाचार चीजों के भौतिक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, यदि आप चाहें तो सोम का बाहरी रूप प्रस्तुत करते हैं, और क्या हमारे पास जॉन के सुसमाचार में यीशु के लिए एक वायवीय दृष्टिकोण, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, एक आध्यात्मिक सुसमाचार है। दूसरे शब्दों में, यीशु मसीह में हमारे पास वही है जो प्राचीन काल में भगवान के संत केवल देखने के लिए उत्सुक थे और वे यहाँ और वहाँ भगवान की झलक पाने में सक्षम थे और निश्चित रूप से उन्होंने पुराने नियम में ऐसा किया था। जब हम अध्याय 1 श्लोक 17 पढ़ते हैं तो मूसा ने निश्चित रूप से हमें ईश्वर की कृपा दी है। यह कहता है कि कानून मूसा द्वारा आया था जो निश्चित रूप से मूसा का अपमान करने या कानून का अपमान करने के लिए नहीं है। यह कहने का कोई मतलब नहीं होगा कि कानून मूसा द्वारा आया था, लेकिन जैसा कि कुछ अनुवाद और कई व्याख्याता कहते हैं, लेकिन अनुग्रह यीशु द्वारा आया था, क्योंकि अगर कानून एक बुरी चीज है तो यह कहना ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि यीशु उस चीज से बेहतर थे, खराब था। यह पाठ कहता है कि कानून मूसा द्वारा आया था, ग्रीक में कोई संयोजन नहीं है, यह सिर्फ इसे खाली छोड़ देता है। कानून मूसा की कृपा से आया था, सत्य यीशु द्वारा आया था। इसका मतलब यह नहीं है कि मूसा ने निर्गमन 34:6 के अनुसार ईश्वर की कृपा और सच्चाई का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसने इसे पूरी तरह से या स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं किया था, जैसा कि अब हम इसे अनुभव कर सकते हैं, जैसा कि हम धर्मग्रंथ के पन्नों पर यीशु के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि कानून मूसा द्वारा आया था, तो हम कह रहे हैं कि जैसा कि पॉल ने रोमियो अध्याय 7 में कहा था, कानून पवित्र और न्यायसंगत था और एक बहुत अच्छी बात थी, लेकिन हमारे पास यीशु में जो है वह और भी बेहतर बात है। यह इसका अंतिम रहस्योद्घाटन है, ईश्वर। इसलिए हम मूसा को बदतर दिखाकर यीशु को बेहतर नहीं बनाते हैं। वास्तव में मूसा जितना अच्छा दिखता है, यीशु उतना ही बेहतर दिखता है, क्योंकि चूंकि मूसा आंशिक था इसलिए यीशु ईश्वर का अंतिम रहस्योद्घाटन है। संत क्राइसोस्टोम ने इसके बारे में इस तरह कहा कि वह मनुष्य का पुत्र बन गया जो ईश्वर का अपना पुत्र था, ताकि वह मनुष्यों के पुत्रों को ईश्वर की संतान बना सके, क्योंकि जब उच्च व्यक्ति स्वयं को निम्न के साथ जोड़ता है तो यह उसके सम्मान को छू नहीं जाता है। इसके बजाय यह दूसरे को उसकी अत्यधिक नीचता से ऊपर उठाता है। तो यह भगवान के साथ था कि उन्होंने किसी भी तरह से अपनी कृपालुता से अपने स्वभाव को कम नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें जो हमेशा अपमान और अंधेरे में बैठे थे, अकथनीय महिमा में उठाया। हमने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण पिता के एकमात्र पुत्र के रूप में उनकी महिमा को चलते देखा। मुझे आशा है कि आपने जॉन के सुसमाचार की प्रस्तावना की इस चर्चा की सराहना की है और इससे सीखा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिन विषयों पर हमने यहाँ संक्षेप में बात की है, वे निश्चित रूप से बाद के समय में वीडियो में अधिक विस्तार से सामने आएंगे। धन्यवाद। यह जॉन के सुसमाचार पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड टर्नर हैं। यह सत्र 3 प्रस्तावना जॉन 1:1-18 है।